नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अगला एक वर्ष सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के आधुनिकीकरण और बल के कर्मियों के कल्याण के लिए समर्पित होगा। गुजरात के भुज में बीएसएफ के हीरक जयंती स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को विश्व का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा है।
विभाग ने तय किया है कि अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे।
बीएसएफ के कार्यों की सराहना करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, बीएसएफ के जवानों ने कुछ ही दिनों में बीएसएफ और सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान ने एक तरफा संधि की घोषणा की और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित हो गया कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि वित्तीय व्यवस्था को पारदर्शी और जनहितकारी बनाने में लेखा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिमला में आज 5वें लेखा सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि लेखा विभाग लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है, जो जवाबदेही, सुशासन, सार्वजनिक संस्थानों का विधि हित और जनहित में इस्तेमाल सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय और विकासशील राज्य की वित्तीय व्यवस्था को पारदर्शी व सुचारू बनाए रखने में इस विभाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में दक्षता लाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने पर विशेष बल दे रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार सरकारी कामकाज में डिजिटाइजेशन और ई फाइलिंग प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत राजस्व विभाग ने पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए विस्तृत स्तर पर नई और आधुनिक तकनीक को अपनाया है। इससे राजस्व संबंधी मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित हो रहा है, साथ ही लोगों को अपने काम करवाने के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत भी नहीं रही है। राजस्व विभाग में शुरू की गई नवाचार पहल से लोगों को लाभ मिल रहा है। गौरतलब है कि 2 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने राजस्व प्रबंधन पोर्टल जनता को समर्पित किया था, जिसके माध्यम से 1,16,490 मामलों में ऑर्डर अपलोड किए जा चुके हैं। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले को लेकर अनशन पर बैठे हिंदू संगठनों ने आज अपना आमरण अनशन समाप्त कर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों की सभी मांगों को मान लिया है और मामले के निपटारे के लिए गठित कमेटी में हिंदू संगठन के लोगों को भी शामिल किया गया है। अब इस मामले में 29 नवम्बर को कमेटी की बैठक में हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही मांगों पर फैसला होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आज दूसरा दिन है। फिल्मों से जुड़ी हुई गतिविधियां सुबह से ही चल रही हैं। पणजी स्थित कला अकादमी में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने प्रतिष्ठित मास्टर क्लास श्रृंखला का शुभारंभ किया। डॉ एल मुर्गन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष का इफ्फी इसलिए भी खास है क्योंकि 50 महिला निर्देशकों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की युवा प्रतिभा को सामने लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने का सिलसिला जारी है, जिससे ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में बारिश व बर्फबारी न होने से सामान्य जनजीवन सहित कृषि बागवानी पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस बीच मनाली लेह मार्ग आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए बंद हो गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।